ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में यातायात को सुचारू बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर पीतमपुरा जेजे क्लस्टर के विभिन्न इलाकों में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए 12 जोन में 120 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में यातायात को सुचारू बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में शिवमूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनने वाली 5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। इस भूमिगत सड़क में यातायात के आवागमन के लिए कुल 6 लेन होंगी। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, आग से सुरक्षा, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी निकासी जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को लेकर सारी तकनीकी और औपचारिक आवश्यकताएं अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष इस परियोजना के शुरू होने की उम्मीद जताई है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार शहर के हर झुग्गीवासी को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती गुप्ता ने राजधानी में मद्रासी झुग्गी तोड़े जाने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोर्ट ने 4 बार इस झुग्गी बस्ती को हटाने का आदेश दिया था ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती।
हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ, जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बैठा था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे। ऐसी कॉलोनी में हम गलियां, नाली, खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर पीतमपुरा और जेजे क्लस्टर के विभिन्न इलाकों में कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के नेहरू कैंप में 24 सीटों वाले जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पीतमपुरा के एकता कैंप में सीसी पेमेंट का उद्घाटन कर लोगों को धूल और जल भराव की समस्या से राहत देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यू और वी ब्लॉक के पास प्रस्तावित 20 सीट वाले जन सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए 12 जोन में 120 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में नागरिकों को संपत्ति कर दाखिल करने और कर माफी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा रही है।
दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 शुरू की है। इसका नाम संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो है। इस योजना के तहत यदि नागरिक वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले 5 वित्त वर्षों 2020-21 से 2024-25 के मूल संपत्ति कर का बिना ब्याज और जुर्माने के भुगतान करते हैं तो उनका बकाया संपत्ति कर और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। नागरिक ऑनलाइन संपत्ति कर विवरण भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण भरा जा सकता है। इसके अलावा नागरिक संपत्ति कर हेल्पलाइन नंबर 7065064988 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं से इस अवसर का लाभ उठाने और पुराने संपत्ति कर बकाया को जमा कराने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत क्षेत्र में लगाए गए निशुल्क शुद्ध आरओ वाटर कूलर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि ये पहल दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री के सभी दिल्ली वासियों को स्वच्छ सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता यहाँ के घरों के पानी से भी बेहतर है।
हमारी पानी की क्वालिटी वो उतनी अच्छी है कि जितना अच्छा यहाँ की कोठियों में सबने आरओ प्लांट लगाकर पानी पी रहे होंगे साकेत में, उससे अच्छा पानी की क्वालिटी है। तो दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी और कि दिल्ली के सारे लोगों को अच्छा पानी मिले, साफ पानी मिले, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल में हम ये लगाएंगे, उसके बाद में जो सरकारी भवन है उनमें लगाएंगे, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर रोड पे अच्छा ट्रैफिक रहता है, जहाँ पे हजारों लोग निकलते हैं, ताकि उनको हम ये साफ पानी दे सकें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने पिछले 11 वर्ष में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने कई प्रभावशाली पहलों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को फिर से परिभाषित किया है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करना, जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण शामिल है। श्री मोदी ने उज्ज्वला योजना को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे कई घरों को रसोई धुआं मुक्त हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मुद्रा ऋण ने लाखों महिलाओं को उद्यमी बनने और स्वतंत्र रूप से अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाया है। नारी शक्ति की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
पिछले दशक में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार की प्रमुख पोषण योजना मिशन पोषण का दूसरा चरण बच्चों, किशोरियों और माताओं पर केंद्रित है। इसका मुख्य हिस्सा पोषण अभियान है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सुधारा जा रहा है। इसके तहत पोषण भी पढ़ाई भी जैसी योजनाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छी प्री स्कूल शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण देती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं ने खासकर गांवों और पिछड़े इलाकों में सुरक्षित प्रसव और मां की देखभाल सुनिश्चित की है। महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मान देने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया है, जिससे पानी लाने का बोझ भी कम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के स्कूल में दाखिले की दर 75.5% से बढ़कर 78% हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। कानूनी सुधारों में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। 3 तलाक को खत्म करना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, लैंगिक न्याय और भागीदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह सफर केवल मदद देने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारत बनाने का है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष के दौरान देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, पीएम ई विद्या जैसे अग्रणी पहलों ने देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम को नया रूप दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं और मुख्य विषयों के साथ कौशल विकास तथा मूल्यवर्धन को जोड़ा गया है।
पिछले 11 वर्षों में भारत की सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर सरकार ने अपनी छाप न छोड़ी हो। और जहां तक शिक्षा की बात है, उसमें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कई परिवर्तन लाने का प्रयास चल रहा है। बहुत सारी चीजों का समावेश इसमें करने का प्रयास है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण भी हो, बुद्धि भी हो, समझ भी हो, साथ में उसपे स्किल पे भी उसको फोकस देने का प्रयास है। कोर डिसिप्लिन्स भी हैं और अंडर ग्रेजुएट स्टडीज को 4 साल का किया, ताकि भारत में बच्चे को सही समय मिले कि वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पे ध्यान दे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 7.9 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रूपये है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड से यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अफीम की तस्करी कर रहे थे। मामले की जांच जारी है और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गोगी गैंग के प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जबरन वसूली, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामलों में वांछित था। पुलिस आगे जांच कर रही है और इस गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कई वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 66 नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि पश्चिमोत्तर दिल्ली में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से भी तालमेल किया है। ये सभी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और वीजा तथा आवर्जन नियमों का उल्लंघन करते हुए रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय इन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए कानूनी और दस्तावेजी कार्यवाही पूरा कर रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने एम्फेटामाइन तस्करी मामले में अवैध रूप से अर्जित की गई 9,20,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। सक्षम अधिकारी तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर संपत्ति जब्ती अधिनियम SAFEMA और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS के अंतर्गत प्रशासक ने NBC के आदेश की पुष्टि की है। आकाशवाणी ने आज अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 जून 1936 को आज ही के दिन भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। ये देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिल्ली वासियों को गर्मी से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अगले कुछ दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में यातायात को सुचारू बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर, पीतमपुरा और जेजे क्लस्टर के विभिन्न इलाकों में कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया है। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए 12 जोन में 120 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।